أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اس وقت علم لینے کے لیے قرآن کریم کا اللہ کے بات کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے بیٹھے میں اپنے اور کاموں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت ڈالے، ان کے گھروں میں کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، جو واقعی اس کو سیریس لیتے ہیں، واقعی یہ اس کو اہم سمجھتے ہیں، واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو وقت دیا جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان میں شوق پیدا فرما دے جو ابھی تک اس میں پیچھے ہیں اور اس کو شاید اتنا ضروری نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے بہت سارا وقت لگایا جائے یا 3 گھنٹے بیٹھا جائے یا اس کے بعد اس کو اس کے ساتھ کچھ کوشش کی جائے، کوئی محنت کی جائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا شوق لگا دے اور ان کے دل میں بھی اس قرآن کے لیے تڑپ پیدا فرما دے. آمین یا رب العالمین. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 سے 281 تک کریں گے. تفسیر دیکھتے ہیں. آج کے سبق میں پہلے جو آیات ہیں، آیت نمبر 272, 273, 274، ان میں وہی جو پچھلی بحث چلی آ رہی تھی صدقے سے متعلق، اس کو ہم مکمل کریں گے. اس کے بعد آیت نمبر 275 سے ربا کے بارے میں آیات شروع ہو جائیں گی، جو مکمل ہوں گی آیت 280 پہ جا کے. اور آیت 281 آج ہم وہ آیت پڑھیں گے، وہ عظیم آیت جو آخری آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی جو قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہوئی ہے نا. کیونکہ دیکھیں جو قرآن پاک کی ترتیب ہے، جس لحاظ سے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں نا، یہ نزولی ترتیب تھوڑا ہی ہے، نازل تھوڑا ہی اس طرح ہوا تھا کہ سورہ بقرہ پہلے نمبر پہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، دوسرے نمبر پہ سورہ بقرہ نازل ہوئی، تیسرے نمبر پہ سورہ آل عمران نازل ہوئی. ایسے تو نہیں ہوا نا. سب سے پہلے تو سورۃ الفلق کی سورہ علق کی شروع کی آیات نازل ہوئی تھی نا اقرا سے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ جو ترتیب ہے نا، یہ جو اس وقت جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اس طرح جو سورت اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اس سورت کو فلاں سورت کے بعد لکھ دو. کوئی آیت اترتی تھی یا چند آیات اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فلاں سورت کے اندر فلاں آیت کے بعد اس آیت کو لکھ دو. ٹھیک ہے. تو یہ آیت جو ہے نا، آیت 281، یہ ہے آخری آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. تو آج ہم اس آیت کو بھی انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. پہلے ہم صدقہ کے بارے میں آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسا، نہیں ہے، علی کا ہدا ہوں، آپ پر ان کی ہدایت. کن کی ہدایت؟ جو غیر مسلم ہیں آپ کے ذمے. آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے نبی، آپ کے ذمے ان لوگوں کی ہدایت نہیں ہے، جو ایمان نہیں لائے ان کو ہدایت دینا آپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن یہ اللہ کے پر ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے. تھوڑا سا اس کا پہلے شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمان صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ناپسند کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا اور یہ آیت اتری. یعنی کیا کرتے تھے مسلمان؟ دیکھیں ان کے تو رشتے دار ہوتے تھے جو غیر مسلم ہوتے تھے، तो अब वो कहते थे ये हमारे रिश्तेदार मुसलमान ही नहीं है, हम क्यों इनके साथ मतलब इनके ऊपर सदका करें। और फिर ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सदका सिर्फ मुसलमानों को दिया जाए, तो ये आयत उतरी, तो आपने फरमाया कि अब हर साइल को दो चाहे वो किसी मजहब का भी हो। तो इसके अंदर इस आयत में जवाब है। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं अक्सर कि क्या हम गैर मुस्लिमों को दे सकते हैं, क्योंकि हम गैर मुस्लिमों के साथ रहते हैं, तो कभी उनकी चैरिटीज मांगती हैं, कभी कोई ऐसी यानी डिजास्टर ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, या कोई यतीम बच्चे हैं उनके लिए, या कोई भूख ऐसी आ जाती है कि जो है जरूरत पड़ती है, तो क्या हम अपना सदका दें इनको कि नहीं दें? हम क्यों दें, ये तो गैर मुस्लिम है। अब गैर मुस्लिम चाहे काफिर मर रहा हो, लेकिन हम कहेंगे नहीं तो ये काफिर है ना, तो हमने इसको नहीं देना। बात ये है, इस आयत से भी पता चलता है कि मेरा रब कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है, कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं ए नबी आपको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि आप इनको हिदायत दें। क्योंकि देखें मुसलमान क्या सोचते थे कि अगर हम इनके ऊपर सदका नहीं करेंगे, इनके ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे, तो हो सकता है इस वजह से ये कभी मुसलमान हो जाए। ये भी उनको इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए वो चाहते थे ना, कि ये थोड़ा मतलब देखो कि अब हमें सदका ही नहीं मिलता क्योंकि हम मुसलमान नहीं, तो वो मुसलमान हो जाए, तो इस वजह से उनकी नीयत ये होती थी, अच्छी नीयत थी। या वो फिर कभी ये कहते थे कि ये तो जब मुसलमान ही नहीं हम क्यों करें, जैसे हम में से बाज लोग जब दीन की तरफ आ जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि अच्छा अब वो फलां है वो तो दीन पे है ही नहीं, वो तो ये करते हैं वो करते हैं, बस उनको तो ना नमाज पढ़ते हैं ना ऐसे करते हैं, तो बस अभी हमने इनको कुछ नहीं देना, या इनके घर में तो ये चीज चलती है, ये तो ऐसे हैं, तो अब हम इनके ऊपर नहीं कुछ स्पेंड करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया आपके ऊपर किसी को हिदायत देना थोड़ी है, अल्लाह है जो हिदायत देने वाला है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए कितनी कोशिश की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ईमान ले आए, लेकिन वो नहीं लेकर आए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्बास नहीं था कि किसी को हिदायत देने, हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। इसीलिए आप अल्लाह से मांगा करें अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, क्योंकि दिल अल्लाह के इख्तियार में है, वो जिसको चाहे हिदायत दे दे और जिसको चाहे हिदायत से मोड़ दे। इसलिए हर वक्त डरते रहें, ये कहें रब्बाना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना, है अल्लाह हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को मोड़ ना देना, हमारे दिलों को टेढ़े ना कर देना, क्योंकि ये भी कोई बईद नहीं है, कोई अपने आप में इतना अपने आप को नहीं समझे कि हम तो बस हिदायत पे आ गए अब हमेशा हमने इसी पे रहना, या हम तो बड़े कारनामे कर रहे हैं। नहीं, किसी का भी नहीं पता कि कौन मरते दम तक हिदायत पे रहता है और कौन नहीं। तो इल्तजाएं किया करें, फखर करने की बात नहीं है, इल्तजाएं अल्लाह के सामने रखा करें कि अल्लाह हमारे दिल को टेढ़ा ना कर देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे या अल्लाह मेरा दिल तेरी दो करीम उंगलियों के दरमियान है। वाकई इंसान का दिल अल्लाह की उंगलियों के दरमियान है, दो करीम उंगली जिधर को चाहे फेर दे, जिधर चाहे फेर दे। चाहे तो किसी का दिल, आज आप किसी को बहुत बुरा समझ रहे हैं, फलां ऐसा है फिर हमने नहीं इसको कुछ देना, अल्लाह उसको हिदायत पे मोड़ दे। और चाहे तो हम जो इतने बड़े बने बैठे, अल्लाह हिदायत से अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह हिदायत से दिल को टेढ़ा कर दे। अल्लाह के बस में है ये, किसी इंसान के बस में नहीं है, ना किसी को हिदायत देना ना खुद हिदायत पे कायम रहना। अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहता है, तो आप इस चीज को बीच में मत लाओ कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है, और इस बेसिस पे किसी की हेल्प करो। कितनी वुसत है इस्लाम में, किस कदर हमदर्दी की फिजा है, कि इंसानियत से हमदर्दी करो, समंदर जैसा हौसला पैदा करो, ऐसे वसी हो जाओ जैसे समंदर है। समंदर को देखिए परवाह नहीं है, उसका पानी दरियाओं में बहे, बर्फ की सूरत में कहीं पहाड़ों पे जम जाए, या बादलों की सूरत में फिजा में ऊपर उठ के चला जाए, उसको नहीं परवाह, या टनों पानी कहीं चला जाए, वो हर एक को सैराब करता है। समंदर से सभी फायदा उठाते हैं, इसी तरह बादलों की भी मिसाल है, आप बादलों की तरह बन जाए। देखिए बादल जब बरसता है, क्या वो ये देख के बरसता है फलां अल्लाह को मानता है मैं इस पे बरसूंगा और ये नहीं मानता मैंने नहीं इस पे बरसना? कभी ऐसा होता है? नहीं, मोमिन ऐसा होता है बादल की तरह, हर एक के ऊपर बरसता है। और जब मेरे अल्लाह ने कह दिया, तुम कौन होते हो रोकने वाले सदके को? हाँ, हिदायत मेरे पास है, मैं जिसको चाहूं हिदायत दूं, तुम कौन से होते हो ये फैसले करने वाले, हमने उसको नहीं देना उसको देना? नहीं, वमा तुनफिकु मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम, जो तुम खर्च करोगे वो तुम्हारे अपने लिए है, जो माल में से तुम खर्च करते हो तुम्हें अपना फायदा है उसमें, तुम्हें इससे क्या? देखिए अब यहाँ पे चार बातें, नहीं तीन बातें बताई गई, अगर चौथी अंतुम ला तुज़लमून को भी करते हैं तो चार बन गई, लेकिन अगर वमा तुनफिकु तक रहे तो तीन बातें बन गई। तीन बातें ऐसी अल्लाह ताला ने बयान कर दी कि देखो मुसलमान, तुम अपनी मुट्ठी को खोलो गैर मुस्लिम के लिए, जो सवाल करता है, जो जरूरतमंद है, जो मिस्कीन है, जो पिसा हुआ है, उसके लिए अपनी मुट्ठी खोलो। तीन इंसेंटिव दिए, तीन रीजनिंग, तीन तरह से दी। देखो तुम तो खर्च करते हो ना अपने लिए, अपने सवाब के लिए, तो सवाब तो तुम्हें मैंने देना है, तुम्हें इससे क्या आगे अगला मुसलमान है या नहीं? सुभान अल्लाह, देखें कैसी बात अल्लाह ताला ने। वो देखो इंसान फिर सोचे कि ये अल्लाह ताला किन के लिए वकालत कर रहे हैं, बताएं हैं कि इनको दो। वो जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, और अल्लाह के साथ शिर्क करना क्या है? जैसे उसको गाली देना। ये वो है जो कहता है मैंने अल्लाह को नहीं मानना, जो उसको मानने से इनकार करता है। ये वो है जो अल्लाह को छोड़ के जाके औरों के आगे सजदे करता है, अल्लाह कहता है इसको भी दो। सुभान अल्लाह, तुम दो, तुमने देना किसके लिए? अपने सवाब के लिए, तुम इसीलिए खर्च करते हो ना, तो दो इनको भी। ये है मुसलमान, ये है मोमिन, जो सारी इंसानियत से मोहब्बत करने वाला है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मखलूक है अय्यालुल्लाह है, अल्लाह का कुंबा है सारी मखलूक, इवन आप एक कुत्ते को पानी पिलाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको अजर मिलता है। हर तार के साथ, एक हदीस है ना, हर तार के साथ, मतलब क्या, हर जानदार के साथ भलाई करो, हर एक जानदार के साथ, चाहे वो फूल है, पौधा है, चाहे वो कोई जानवर है, कुत्ते जैसा जानवर भी है, भलाई लेकिन करो। तो मोमिन कितनी प्यारी शख्सियत होती है ना, वो नहीं ये देख सकता है कोई तड़प रहा है और हम कहें नहीं मुसलमान हो तो फिर है। हाँ, मुसलमान के आपके ऊपर दो हक हो जाते हैं, एक इंसानियत के नाते और एक दीन के नाते, क्योंकि वो इंसानियत में भी आपके साथ शरीक है और आपके दीन में भी आपके साथ शरीक है। लेकिन ये नहीं है कि अपना हाथ दूसरों से रोक लो। फिर नंबर टू, अल्लाह ताला ने क्या रीजनिंग दी, क्यों खर्च करो? वमान तुन्फिकूना इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, और तुम तो खर्च नहीं करते मगर सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की रजा मिले, अल्लाह का दीदार मिले। वजहिल्लाह, अल्लाह का चेहरा है ना, इसे दो माने ले सकते हैं आप। एक ये कि तुम तो अल्लाह के दीदार के लिए खर्च करते हो ना, कि अल्लाह ताला इसलिए मैं देती हूँ कि एक दिन तू जन्नत में मुझे अपना दीदार कराए, मैं इसलिए खर्च करती हूँ। तुम तो ये चाहते ना, फिर तुम्हें इससे क्या कि किसको दे रहे हो? और दूसरा ये, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए तुम देते हो ना, कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। हाँ, तो फिर तुम दो, फिर अल्लाह ही तुम्हें कह रहा है कि तुम दो इनको, नॉन मुस्लिम्स पे खर्च करो। और वजह पे तवज्जो भी आ जाती है कि उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए। तुम तो ये चाहते हो ना मैं अल्लाह की नजरों में नंबर बना लूं, अल्लाह के आगे नंबर बना लूं अपने, है ना, इंसानों के आगे तो नंबर बनाते रहते हैं। आपका खर्च करने का मकसद क्या होता है? मैं अल्लाह के आगे नंबर बनाऊं, मैं अल्लाह की नजरों में अच्छी हो जाऊं। तो तुम अल्लाह की नजरों में तो अच्छी हो जाओगे जब तुम खर्च करोगे, तुम्हें इससे क्या कि किसको दे रहे हो? वमा तुनफिकु मिन खैरिन युवफ्फा इलैकुम वअंतुम ला तुज़लमून, और जो भी तुम खर्च करोगे माल में से पूरा पूरा दिया जाएगा तुम्हें। ये थोड़ी है कि अगर गैर मुस्लिम पे खर्च करोगे तो तुम्हें वहां पे नहीं दिया जाएगा, मुसलमान पे खर्च करोगे तो वहां पे ज्यादा दिया जाएगा। तो नहीं, तुम जिसके लिए खर्च कर रहे हो ना उसने देना है, वो कह रहा है मैं पूरा पूरा दूंगा, तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। कोई जुल्म, जुल्म क्या होगा कि अगर अब पूरा पूरा अजर ना दिया जाए तो वो जुल्म हो गया ना। जुल्म क्या होता है? किसी के हक में कमी करना। तो तुम पे कोई कोई कुछ कमी नहीं की जाएगी तुम्हारे ऊपर। कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, तुम्हारा अजर मारा नहीं जाएगा। भला और कौन सा मजहब है जिसमें इस कदर टॉलरेंस है, इस कदर इंसानी हमदर्दी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना कि उनके पास एक मेहमान आया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे, तो खाना रखा। इससे पहले कि वो खाना शुरू करता, उससे पूछा कि क्या तुम अल्लाह को मानते हो? वो कहता नहीं, मैं तो नहीं मानता अल्लाह को। कहा अल्लाह भैया जाओ फिर चले जाओ, मैं नहीं तुम्हें खाना खिलाता, चले जाओ यहां से। तो वो उठ के चला गया। फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आ गए, ए इब्राहिम 40 साल से ये मेरी नाफरमानी कर रहा था, मुझे नहीं मान रहा था, तो मैंने तो इसके ऊपर अपना रिस्क बंद नहीं किया। एक दिन ये तेरे पास आ गया तो तूने कह दिया कि मैं नहीं खिलाता। सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े गए, कहा कि वापस आ जाओ। वो कहने लगा क्यों, आप क्यों बुला रहे हो? फरमाया कि तुम्हारे लिए तो वही आ गई। वो इतना हैरान हुआ, उसने कलमा पढ़ लिया कि अल्लाह ताला इस तरह, वो इतना रहीम है, इतना करीम है। इतने सालों से अल्लाह की नाफरमानी की, इंसान का देखे हौसला बस इतना ही होता है ना, अल्लाह अपना रिस्क नहीं बंद करता। इंसान के पास एक दिन कोई सवाल ही आ जाए तो वो अपना रिस्क बंद कर देता कि नहीं देता तुझे। और फिर सदका किसके लिए? तो ये आपको पता चल गया कि गैर मुस्लिमों पे भी खर्च करो, और किसके ऊपर खर्च करो? लिल फकरा, उन फकीरों, यानी फकीर का मतलब ये नहीं कि जो आपके आगे हाथ फैलाता है, मगर वो तंगदस्त, अल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह, जो घेर लिए गए अल्लाह के रास्ते में। घेर लिए गए का मतलब क्या? रोक लिए गए। किसने रोका उनको? फी सबीलिल्लाह ने, यानी फी सबीलिल्लाह कामों ने उनको रोक लिया। वो कौन से काम होते हैं जो फी सबीलिल्लाह काम होते हैं? जाती कोई उनकी मसरूफियात नहीं थी कि वो अपनी कोई सी मसरूफियात में हो, नहीं, फी सबीलिल्लाह काम कौन से हैं? दीन के काम। दीन के कामों ने उनको रोक लिया। किस चीज के से रोक लिया? कमाई करने से। देखिए बाज लोग ऐसे हैं ना, कई स्कॉलर्स हो सकते हैं, कई इमाम मस्जिद हो सकते हैं, कई और लोग हो सकते हैं जो रिसर्च वर्क कर रहे हो, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दिया, और ऐसा वक्फ किया कि अब उनके पास टाइम नहीं कि वो जॉब करें, उनके पास टाइम नहीं है कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करें। देखिए उसके लिए टाइम चाहिए ना, तो ये लोग क्या है, या तो ये दीन के लिए टाइम दे सकते हैं, जाहिर है वो भी एक फुल टाइम जॉब है, और या फिर ये बिजनेस कर लें, कमाइयां कर लें। तो अब क्या है, कमाई करने का तो इनके पास वक्त है नहीं, फुल टाइम डेडिकेटेड है दीन के लिए, तो अब इनकी जरूरियात कौन पूरी करेगा? हाँ? तुम पूरी करोगे? तुम लोग जो दुनिया के कमाइयां कर रहे हो, अब तुम्हारे पास दीन का रिसर्च वर्क करने के लिए, या दीन के इशाद के लिए, दीन की तबलीग के लिए, दीन के और काम करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि तुम जॉब्स करते हो, बिजनेस करते हो और काम करते हो। तो अब तुम क्या करो, तुम कॉम्पेंसेट करो इस चीज को। अब इंसान को गिल्ट होती है ना कि अब मैं क्या करूं, देखिए मैं तो अब इतना काम नहीं कर सकती कि कोई किसी जगह जाए वहां पे जाके लेक्चर दे, दूसरी जगह जाए वहां जाके लेक्चर दे, अब उसके ऊपर खर्चा भी है, सब कुछ है। अब वो उसका, उस बंदे का ये खर्चा कौन उठाएगा? कौन उसके घर को, घर का चूल्हा चलाएगा? तो अब ये इन लोगों का काम है जो दुनिया में कमाइयां कर रहे हैं, वो कॉम्पेंसेट करें, उनकी गिल्ट इस तरह दूर हो सकती है। वो खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने माल से फिर वो इन लोगों के ऊपर स्पेंड करें, ठीक है? ये भी सदका है, इन लोगों पे स्पेंड करना जिन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया वह दीन के लिए। समझ आ गई बात? तो फरमाया लिल फुकरा अल्लदीन उहसिरू फी सबीलिल्लाह, वो फकीर, वो तंगदस्त जो घेर लिए गए अल्लाह के रास्ते में, यानी जिनको अल्लाह के कामों ने रोक लिया हुआ है, अब वो अपनी, इनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो कोई काम धंधा दुनिया का कर सके और अपने घर का चूल्हा चला सके। लेकिन इनकी सिफात है, कुछ फोर फोर क्वालिटीज यहाँ पे बताई गई इनकी। वो फोर क्वालिटीज क्या है? नंबर 1, ला यस्तुतीउन दरबन फिल अर्द, उनके पास इस्तात नहीं है कि वो जमीन में दौड़ धूप कर सके, यानी कमाई के लिए खुद निकल सके। जो मैंने अभी आपको बात कही कि जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, जाहिर है उसमें वक्त चाहिए ना, तो उनके पास इतना टाइम कहाँ है? दीन भी फुल आपकी कंसंट्रेशन और फुल आपका टाइम मांगता है। ये कोई ऐसा ही नहीं है कि बस थोड़ी देर के लिए और सारा दिन जॉब पे बैठे रहे, शाम को आके एक सफा पढ़ लिया, इससे तो नहीं काम होता ना। तो फिर दीन का काम कौन करेगा? अगर सारे ही बिजनेस और सारे ही जॉबें शुरू कर दें, कौन करेगा दीन का काम? कुछ लोगों को इस तरफ भी तो डेडिकेट होना चाहिए। तो फिर अब माशरे में क्या होता है, एक सोसाइटी में जो लोग अपने आप को इस तरफ डेडिकेट कर देते, उनकी हालत जाहिर है फिर बहुत इकोनॉमिकली उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि उनके पास नहीं इतना होता। कहाँ से कमाई करेंगे, क्या करेंगे, वो कैसे उनका घर चलेगा? तो फिर लोग उनको बहुत लुक डाउन करते हैं, बहुत हकीर समझते हैं। आप देख ले हमारे माशरे के अंदर क्या इज्जत रह जाती है। कोई एक मस्जिद के इमाम है, या कोई एक जो जो लोग भी दीन की तबलीग का काम करते हैं, आलिम है, ये है, उनकी क्या इज्जत रह जाती है? क्योंकि हाँ, माशरे के अंदर जाहिर ही बात है उन फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं होते, सब लोग उनको एक हकीर सा समझते हैं, उनको कोई इज्जत नहीं देते, अपने बराबर का नहीं समझते। तो बाकी लोगों का काम है उनकी अपलिफ्ट के लिए कि बाकी लोग सदका करें उनके ऊपर, ये उनकी तरफ से सदका होगा। इसको अब ये ना समझें कि हमने इनके ऊपर बस खैरात कर दिया, ये तो हमारे टुकड़ों के ऊपर पल रहे हैं, हमने तो इनको इनके ऊपर नो, वो जो काम कर रहे हैं ना वो आपके हिस्से का काम कर रहे हैं। आपको ये काम भी करना चाहिए था, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो समझ लें आपकी वाली जो जॉब है वो लोग कर रहे हैं, अब आपका काम है उन पे स्पेंड करना, समझे ना। तो उनको इस तरह जलील समझ के, हकीर समझ के, कि हम अपने सदके खैरात इनको दे देते हैं, ये बेचारे इस तरह के है ना, चलो इनकी कोई मदद हो जाए। जब हम ऐसा एटीट्यूड करते हैं ना, तो इसका मतलब है हम दूसरे को नीचा देख रहे हैं। उनकी अपलिफ्ट करें, उनको ऊपर लेकर आए, ये सोचे हमेशा सदका देते वक्त कि इसकी जरूरत मुझे है। हम पता है जब देते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अरे चलो मैंने फलां को दे दिया, चलो उस बेचारी की मदद हो जाएगी। नहीं, मदद की मोहताज तो मैं हूं, इसलिए कि मुझे अजर चाहिए अल्लाह से, इसलिए कि मुझे नेकियां अपनी बढ़ानी है, इसलिए कि अल्लाह के पास जाके मुझे जरूरत होगी इन अमाल की, इसलिए मैं फकीर हूं, समझे। जब आप इस सोच के साथ देंगे ना, तो ना आपके अंदर तकब्बुर आएगा, ना आप दूसरों को हकीर समझेंगे, ना दूसरों को नीचा समझेंगे, ना अपना कोई एहसान समझेंगे दूसरे पे, ठीक है। तो ये लोग क्या है जमीन में, देखें ये भाग दौड़ नहीं कर सकते, ये वो दीन का वो काम कर रहे हैं जो सबकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने अपने कंधों पे बाकी सबकी जिम्मेदारी ली हुई है, तो इनका हम पे एहसान है, वरना हमारे दीन का काम कौन करेगा, ठीक है। तो अब इनको माशरे में ऊपर लेकर आए, सबके बराबर करना चाहिए। आज चूंकि ये बात नहीं है, इसी वजह से देख लिया आपने ये अंजाम हुआ कि आज किसी को कह दें दीन की तालीम लो, तो वो क्या कहते हैं, जो जो अच्छे होते हैं फाइनेंशियली, वो कहते हैं लो अब हम ये तालीम लें, यानी अपने आप को समझते हैं कि हम डाउनग्रेड करते हैं, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ये क्या है, इनकी कौन, इनके पास कौन से कोई पैसे होते हैं, हम तो हर चीज को माल में तोलते हैं ना, कि उसके बाद क्या है, बस एक हैंड टू माउथ जिंदगी गुजरेगी फिर इसकी, तो कोई भी इस तरफ नहीं जाना चाहता। जिस वक्त इन लोगों को आप ऊपर लेकर आएंगे माशरे में, तो लोग खुशी के साथ फिर दीन के लिए भी अपना वक्त निकालेंगे, कि ऐसा नहीं है कि कोई भूखे मरेंगे, अल्लाह ताला उनके लिए भी फिर इंतजाम कर रहा है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि इनके ऊपर स्पेंड करो, क्योंकि ये नहीं खुद जाके जॉब्स कर सकते। यहसबुहुमुल जाहिलु अग्नियाआ मिन तअफ्फुफ, जाहिल जो है ना, यानी नावाकिफ, जो जिसको कोई पता ही नहीं है, वो उनको क्या समझता है, अग्निया। यहसबुहुम यानी समझता है उनको, कौन समझता है, जाहिल, एक जाहिल ही वाकई उनको अग्निया समझ सकता है। उसे वो कहते हैं इनको कौन सी कोई जरूरत है, हमने तो देखा था अच्छे भले कपड़े इसने पहने हुए थे, मैंने उसके कपड़े देख के और उसके बाद सोच लिया कि जो है ये तो इसको कहाँ इतनी वो है, नहीं, इसको नहीं कोई जरूरत। जाहिल उसको दौलतमंद समझता है, मिना ताफ इस वजह से कि वो पाकदामनी इख्तियार किए हुए, इस वजह से कि वो मांगता नहीं है, वो हर एक से कहता नहीं फिरता कि मुझे दो मुझे दो, पीछे नहीं पड़ जाता। तो लोग सोचते हैं कि जो मांगता नहीं है शायद इसको जरूरत ही नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है, उनकी खुददारी है, इस वजह से नहीं वो मांगते, इस वजह से नहीं वो हाथ फैलाते। तारीफ़ुहुम बिसीमाहुम, तुम पहचान लोगों उनकी निशानियों से उनको। आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब आपको पता होगा कि कहाँ से आता है इनका, क्या इनकी इनकम का सोर्स है, कितने पैसे कहाँ से आते हैं, कितने इनके बच्चे हैं, क्या इनका रेंट है, क्या इनकी जरूरियात है। तो खुद ही अगर अक्लमंद होंगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किधर से इनका गुजारा पूरा होता होगा। तो तुम उनको उनकी निशानियों से पहचानोगे। और नंबर फोर बात क्या है, नंबर थ्री बात क्या थी, तआफुफ से। तआफुफ यानी वो मांगते नहीं है किसी से। और नंबर टू क्या बात थी, कि वो जाहिल उसको गनी समझता है। नंबर फोर बात क्या है, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो नहीं मांगते लोगों से इसरार करके, लिपट नहीं जाते किसी से, लिपट लिपट के नहीं लोगों से मांगते। यानी एक लोग होते हैं ना कि यानी वो किसी के पीछे ही पड़ जाते हैं, तो वो ऐसे नहीं है, किसी के पीछे नहीं पड़ते। अच्छा, अब आप यहां पे देखें, एक तरफ ये भी है, ये एक यानी जिस जो देने वाला है उसको तो ये कहा गया ना, तुम दो और तुम खर्च करो। भाई यहां पे ये भी पता चलता है कि मांगना जो है ना, वो इस्लाम में कोई पसंदीदा चीज नहीं है। इसीलिए कहा गया ना, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लोगों से लिपट के मांगते नहीं है, वो किसी से सवाल नहीं करते, वो अपनी हालतें ऐसी नहीं बना लेते कि लोग आके उनके सामने 2-4 रुपए फेंक के चले जाएं। तो खास तौर पे जो दीनदार तबका है ना, उनके लिए बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है कि वो मांगे लोगों से। आजकल हमारा क्या मिजाज बन गया, आपने देखा, हर तरफ चंदा मांगने वाले हम बन गए हैं। दीनी लोग जो है ना, चाहे किसी मस्जिद में चले जाओ, मदरसे में चले जाओ, कोई पढ़ाने वाले, एवरीवेयर बस डोनेशन दे दें हमें। लोग जो है ना, यकीन करें, बाज दफा मस्जिद जाने से घबराते हैं, इस वजह से बस चले जाएंगे तो इनका तो काम ही है मांगना। रमजान में देख लें, उसमें देख लें, मांगने को पसंद नहीं किया गया इस्लाम में। वो तो खैर अपनी जात के लिए नहीं मांगते, तो इदारे के लिए मांगते हैं। मगर हर वक्त एक मिजाज बना लेना कि लोगों की जान ही ना छोड़ना, उनके साथ लिपट जाना, अब आप देंगे नहीं तो हम आपको नमाज ही नहीं पढ़ाएंगे, अब बैठे रहे आप लोग भी ऐसे। लिपट लिपट के मांगना नहीं चाहिए। दीनदार बंदा जो होता है ना, उसकी इज्जत उसके दीन की वजह से होती है, उसको अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, आप नेकी में शरीक करें जरूर, मगर उनके सामने बेगर्स ना बन जाएं कि फकीर बन गए, बस लिपटे में उनसे, चिमटे में उनसे, अब जान ही नहीं छोड़ रहे। नहीं, ये सही चीज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मुझे जमानत दे के कभी किसी से सवाल नहीं करेगा, तो मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। कितनी बड़ी बात है, तुम मुझे इस चीज की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, कभी किसी से सवाल ना करो। इसी तरह एक जा आता है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। तो लेने वाला हाथ ना रखो अपना, अल्लाह ताला हमें हमेशा देने वाला हाथ दे, ऊपर वाला हाथ दे, अल्लाह ताला इससे बचाए नीचे वाले हाथ होने से। लेकिन बात वही होती है कि एक दफा इंसान की झिझक खुल जाती है ना, फिर वो मांगने पे ही तुल जाता है, हर वक्त इधर से ही मांगना, क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है। खास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से सवाल करता है, वो आग के अंगारे मांग रहा है। यानी अच्छे भले भी हैं, लेकिन बस ऐसे ही मांगते जा रहे हैं, मांगने की आदत ही पड़ गई। वो पता है क्या मांग रहा है, आग के अंगारे, चाहे वो दीन वाला है चाहे नहीं दीन वाला, कोई भी है। तो फरमाया, अब चाहे तो कम कर ले और चाहे तो बढ़ा ले। आग के अंगारे तुम अपने लिए चाहो तो कम कर लो, चाहो बढ़ा लो, ये आग के अंगारे हैं बस। अरफा के दिन एक आदमी था, लोगों से मांग रहा था, हजरत अली ने देखा तो फरमाया, आज के दिन और इस जगह तू अल्लाह के सिवा दूसरों से मांगता है, और उसको दुर्रे से पीटा। इसी तरह हजतुल विदा पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके का माल तकसीम कर रहे थे, दो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे, आपसे सदके का माल मांगने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर उठा के देखा उनकी तरफ, फिर निगाह नीचे कर ली, और वो लोग जो दो लोग आए थे वो खुद कहते हैं कि आपने हमें कवि और ताकतवर देख के फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे देता हूं, मगर याद रखो, सदके के माल में मालदार और ताकतवर का हिस्सा नहीं है। यानी तुम अच्छे भले ताकतवर हो, सेहतमंद हो, काम कर सकते हो, काम करो। इससे अंदाजा लगाएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का कोड़ा भी ऊंट से गिर जाता था ना, तो कभी सवाल नहीं करते थे कि कोई मुझे उठा के दे दे। सवाल करना अच्छा नहीं है कि इंसान मांगता रहे। एक और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाली जो हमेशा लोगों से मांगता रहता है ना, कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके मुंह पे गोश्त की एक बोटी भी नहीं होगी। यानी जैसे आपने स्केलेटन देखा कितना खौफनाक होता है, ऐसे वो होगा। तो एक इसी तरह आपको वो मशहूर हदीस भी याद होगी कि एक बंदे ने आके सवाल किया, तो आपने पूछा उससे कि तुम्हारे घर में कुछ है? उसने कहा हाँ, एक टाट है और एक प्याला है। फरमाया दी दोनों चीजें मेरे पास ले। फिर आपने उन दोनों चीजों को नीलाम कराया, कौन है जो ये चीजें खरीदता है? एक शख्स ने कहा मैं एक दिरहम में लेता हूँ, दूसरे ने कहा मैं दो में ले लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दिरहम में वो दो चीजें उसकी बेच दी, एक दिरहम उसको दिया, फरमाया कि जाओ अपने घर वालों के लिए खाना पीना ले आओ, और दूसरे दिरहम से कुल्हाड़ी खरीद के लेकर आओ मेरे पास। जब वो कुल्हाड़ी खरीद के लाया तो आपने उसके ऊपर लकड़ी का दस्ता खुद ठोंका और फरमाया जाओ जंगल से जाकर लकड़ियां काटो और ला के बेचो, और 15 दिन के बाद आना मेरे पास। 15 दिन के बाद वो आया तो उसके पास 10 दिरहम थे जो उसने कमाए हुए थे। कुछ दिरहमों का कपड़ा खरीदा, कुछ का खाना खरीदा, और वो अच्छे हाल में हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया तेरे लिए ये उस चीज से बेहतर है कि कयामत के दिन सवाल करने से तेरे चेहरे पर बुरे निशान हो। यानी इसके निशान कयामत के दिन उसके चेहरे पे होंगे कि ये मांगने वाला था लोगों से। तो मांगने को पसंदीदा नहीं किया गया कि लोगों से लिपट जाए, लोगों से मांगते रहे, फकीरी की हालत बना के रखें, ये एक अच्छी बात नहीं है। वमा तुनफिकू मिन खैरिन, और जो तुम खर्च करोगे माल में से, इन अल्लाह भी अलीम, तो बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है इसको। अब फिर देखें क्या पता चले हमें इस बात से कि सवाल, एक तो सवाल करना नहीं है, मांगना नहीं। किसी को आप ये मशवरा दे सकते हैं कि यहां यहां पे आप खर्च कर सकते हैं, मगर ये नहीं कि हम खुद उसके वो बन जाए सवाली, ठीक है। और जब किसी से सवाल किया जाए तो देने वाले को भी चाहिए कि वो इनकार ना करे, जितनी इस्तेताअत हो दे दे। बस आप दूसरे से सवाल कर ही लिया ना, तो अब आप दे दे। तो ये हमें चीजें बताती हैं कि इस्लाम का मिजाज क्या है। देखिए इस्लाम का मिजाज ये है, देने वाले को कहा गया तुम अपना हाथ खोल दो, तुम अपने हाथ से दे दो, और लेने वाले को कहा गया कि तुम, ये नहीं है कि बात बे बात सवाल के लिए हाथ उठा लिया करो, नहीं। और खास तौर पे उन लोगों के ऊपर खर्च करो जो कि दीन में अपने आप को ऐसा वक्फ किए हो कि उनके पास वक्त ना हो कोई चीज कमाने का। आप उनकी हालत ज़ार देखें, उनका घर बार देखें, या उनका पहनना ओढ़ना या खाना पीना देखेंगे, हो सकता है आपको ये लगे कि ये अच्छे भले मालदार हैं, लेकिन आप कई चीजों से पहचान लेंगे कि इनका गुजर कोई इतना मुश्किल, मतलब कोई इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। इस इनकम में, इसमें कहाँ से इनका खर्चा पूरा होता होगा? तो उस वक्त फिर इंसान जो है ना, उनके कुछ चीजें देख के, कुछ निशानियां देख के फिर उनकी खुद हेल्प करें। वो ऐसे लोग भी नहीं है कि लोगों से लिपट लिपट के मांगते रहे, ठीक है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मिस्कीन वो नहीं है जो दर बदर जाते हैं, कहीं से बस एक खजूर मिल जाए, कहीं से दो लुकमे मिल जाए, कहीं से एक वक्त का खाना मिल गया, बल्कि वो भी मिस्कीन है जिसके पास इतना नहीं है जिससे वो बेपरवाह हो जाए, जिसको हम कहते हैं ना हैंड टू माउथ, और उसने अपनी हालत भी ऐसी नहीं बनाई जिससे हर शख्स की इसकी जरूरत का एहसास करे और कुछ एहसान करे, और ना ही वो सवाल के आदी है। तो उनको उनकी इस हालत से जान लेगा जो साहिब बसीरत होगा, जो अकलमंद होगा ना, वो पहचान लेगा कि नहीं, ये बंदा है जो डिजर्विंग है। अच्छा, हम तो चाहते हैं ना कि बिल्कुल कोई सड़क पे आ जाए ना, तब हमने जाके हेल्प करनी है, वरना तो हमने अपना हाथ खोलना ही नहीं। वैसे बाजार में बेशक हम कितनी फजूल खर्ची करते होंगे, लेकिन उसको देते वक्त हम इतनी ज्यादा वो उस खोज कुरेद कर लेंगे ना कि इसके घर में अगर ये चीज मैंने देख ली तो मैंने नहीं इसको देना। तो आप खुद देखे ना, जो मोमिन होता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की दानाई से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन जो होता है वो पहचान लेता है। तो उनकी कोई निशानियां होंगी जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ये वाकई डिजर्विंग है या नहीं। लेकिन ये नहीं है ना कि फिर इंसान इतना ज्यादा भी इसके चीज के अंदर मतलब ऐसे हो जाए कि इतना फिनिकी हो जाए कि बिल्कुल जो फटे पुराने कपड़ों के साथ आए बस उसको ही देखे। यहाँ पे ये पता चलता है कि ऐसा कुछ भी उनकी हालत नहीं होगी। उद्वल के देखने वाला समझेगा शायद इसको अच्छे ही हाल है। अल्लदीना युन्फिकून अमवालहुम बिललैलि वन्नहारि सिर्रन वला अलानियतन, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालों को रात को और दिन को छुपा के और एलानिया, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनके अजर उनके रब के पास है। अब ये देखें इस आयत के अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेट किया गया है खर्च करने पे, इसलिए कि रात दिन खर्च करना क्या होता है। आप जैसे कि किसी को कहते ना, तुमने तो दिन रात एक ही काम पकड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रात को भी काम करी दिन को भी काम। उसका मतलब क्या है, हर वक्त यानी तुम तो एक ही काम करती रहती हो, ऐसा ही है ना। सिरन व अलानियतन, छुपा के भी और एलानिया तौर पे भी। अब जाहिर है या तो इंसान छुपा के देगा या ओपनली देगा, यही है ना। तो ये कौन लोग हैं जिनकी ये बात हो रही, यानी जो जिन्होंने काम ही ये पकड़ लिया कि वो खर्च करते रहते हैं, वो देते रहते हैं। खर्च बाजार में नहीं खर्च करना, मॉल में नहीं, अल्लाह के रास्ते में देते रहते हैं। रात दिन उन्होंने यही काम पकड़ा हुआ, चाहे छुपा के खर्च करना हो चाहे एलानिया खर्च करना हो। इसलिए कि बाज जगह छुप सकता ही नहीं है जब, और फिर वो काम जो आप दिन रात करते हो तो फिर कैसे उसको छुपाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, वो एक हदीस है अभी मेरे सामने नहीं है, कि उस दिन ना हलाक हो जाएंगे वो लोग जो, मैं अपनी वर्ड्स में इसका मीनिंग बता रही, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मेरे सामने, तो कि वो लोग हलाक हो जाएंगे जो मालदार हैं, सिवाय उनके जो दाएं बाएं आगे पीछे खर्च करते जाएं। यानी इतना खर्च करें दाएं बाएं आगे पीछे, यानी हर वक्त खर्च करें, अदरवाइज हलाक हो जाएंगे वो जो मालदार लोग। माल का हिसाब बड़ा सख्त होना वहां पे, और ये पूछ होगी वहां पे, सेपरेट एक क्वेश्चन होगा इस चीज का, जिसका आंसर किए बगैर कोई हशर के मैदान से हिल नहीं सकेगा। वो एक क्वेश्चन क्या है कि माल कहाँ खर्च किया। तो क्या हम अपने मालों का हिसाब दे सकेंगे कि एक एक डॉलर एक एक पैनी हमने किधर खर्च किए। वो लोग बच जाएंगे जो सुबह शाम खर्च करते हैं, छुपे खुले खर्च करते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है। उनको कोई खौफ भी नहीं होगा, कोई गम भी नहीं होगा। खौफ किस चीज का होता है, आइंदा का खौफ होता है ना, फ्यूचर का। हमेशा इंसान को खौफ लगा रहता है, पता नहीं ये ना हो जाए ये ना हो जाए। और गम किस चीज का होता है, पास्ट का, अरे पास्ट में ऐसे क्यों मैंने कर दिया, वो क्यों हो गया। तो उनके ना फ्यूचर का कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा पास्ट में जो भी किए। इसलिए कि सदका करने से यहाँ पे क्या पता चलता है, खौफ और गम से निजात मिल जाती। कितने सुकून में आ जाए ना इंसान के, जिसको ना खौफ हो तो ना गम हो, दुनिया में भी बरकत हो जाती है और आखरत में भी अजर मिलता। तो इस ग्रुप में शामिल होने से हमें कितना फायदा मिल सकता है, क्योंकि आज हम सब चाहते हैं कि खौफ से पनाह मिल जाए, हाय गम दूर हो जाए किसी तरह। अल्लाह ताला ने उसके लिए नुस्खा दे दिया। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी भूखे मोमिन को सैर होके खाना खिलाए, अल्लाह ताला उसे जन्नत के एक ऐसे दरवाजे से दाखिल करेगा जहां से सिर्फ ऐसे ही लोग जाएंगे जो ये काम करते होंगे। यानी जो जो लोग लोगों की भूख मिटाते थे ना, वो सारे इसी दरवाजे से जाएंगे। एक स्पेशल दरवाजा उन लोगों के लिए। सुभान अल्लाह। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी मुसलमान को लिबास पहनाता है, वो उस वक्त तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है जब तक उस पर उसका एक टुकड़ा भी बाकी रहे। और एक और हदीस में एक धागा तक है, एक एक टुकड़ा भी उसका उसके जिस्म पे बाकी रहेगा ना, वो यूज करता रहेगा, यानी जब तक उस वक्त तक ये अल्लाह की हिफाजत में रहेगा जिसने उसको कपड़ा पहनाया। तो अगर ऐसा हम लोग करने लगे, सारे लोग अगर ऐसे हो जाए बताएं कि दिन और रात खर्च करते हैं, तो भला कोई भूखा भूखा रहेगा। कोई प्यासा प्यासा रहेगा, प्यासों की प्यास मिट जाएगी, कोई तन नंगा नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जो मुसलमान किसी मुसलमान की कपड़े की जरूरत को पूरा करता है, उस वक्त कपड़े की जरूरत के वक्त उसको कपड़ा पहनाएगा, अल्लाह ताला जन्नत का सब्ज लिबास उसको पहनाएगा, और जो किसी मुसलमान की भूख होने के वक्त उसको खाना खिलाएगा, अल्लाह उसको जन्नत के फलों में से फल खिलाएगा। सुभान अल्लाह। अब आप बताएं कि इसके बाद फिर कौन भूखा प्यासा रहेगा। और फिर फरमाया, और जो किसी मुसलमान को प्यास के वक्त पानी पिलाएगा तो अल्लाह ताला उसे रहीक मख्तूम में से पिलाएगा, जन्नत की शराब है उसमें से पिलाएगा अल्लाह ताला। कैसी खुशकिस्मती है। तो बताएं माशरा कैसा हो जाए जहां पे सारे लोगों का काम यही हो, दिन रात खर्च करना, छुपे खुले खर्च करना, है ना, जहां पे लोगों की मुट्ठियां कभी बंद ही ना होती हैं। जब मुट्ठियां बंद होने लगती है ना, तभी ये मोहताजियां होती हैं। एक बद्दू ने आके कहा था, या रसूल अल्लाह मुझे ऐसा काम बता दे जो मुझे जन्नत में ले जाए। फरमाया, गुलाम आजाद करो, असीर यानी कैदी को रिहा करो, ऐसा ना करो, कर सकते हो तो भूखे को खाना खिलाओ और प्यासे को पानी पिलाओ। इतनी ज्यादा तरकीब है खर्च करने की, फिर भी हम क्यों नहीं खर्च करना चाहते। तंग हो जाते हैं ना, एक तो शैतान वसवसे डाल देता है, ऊपर से किसी को देने के ऊपर दिल बिल्कुल ही तंग हो जाता है। दिल को वसी करें, दिल को बड़ा करें, ये सोचा करें जो दे रहे हैं ना ये ही मुझे वहां पे मिलेगा, तो मैं जैसा कपड़ा दूंगी वैसा मुझे वहां मिलेगा, जैसा जो मैंने जेवर वहां पे लेना है वो मैं यहाँ पे अल्लाह के अकाउंट में डिपॉजिट करा दूं, वो जेवर वहां मिल जाएगा। जो चीज भी यहाँ पे खर्च करूंगी, जैसे अब खाना मुझे वहां पे चाहिए, जन्नत का खाना चाहिए, मैं यहाँ पे लोगों को खाना खिलाऊं, मुझे जन्नत की शराब पीने का शौक है तो हाँ मैं यहाँ पे लोगों को की प्यास को बुझाने का इंतजाम करूं, कोई कुआं खुदवा दूं, कोई ऐसा नल लगवा दूं लोग पानी पिया करें, जहां साफ पानी लोगों को मिले। मुझे वहां पे कपड़े चाहिए, जन्नत के ड्रेसेस चाहिए, मैं यहाँ पे किसी मुसलमान के कपड़े की जरूरत को पूरी कर दूं। ठीक है, तो ये खर्च करने के पर। अच्छा, अब हमने ये तीन आयात में क्या पढ़ा, खर्च करना। सबसे पहली आयत के अंदर क्या पढ़ा, खर्च करो, चाहे तुम्हें गैर मुस्लिम पे ही खर्च करना पड़े। और इसमें देखें, बाज दफा शैतान ये भी आता है, नहीं ये तो कोई जेन्युइन नहीं है, ये तो पता नहीं वहां जाके आप यहाँ से भेजते हैं वो वहां पे बाजारों में बिक जाता है, लोगों तक तो पहुंचता नहीं है, ऐसा हो जाता है, वो हो जाता है, और फलां वो तो इतना जरूरतमंद भी नहीं है। तो देखें जो आप खर्च करेंगे ना, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, खाली अनफुसिकुम, तुम्हारे अपने लिए बेहतर, तुम्हें तो अजर मिल जाएगा, अल्लाह ताला युवफा इलैकुम वो पूरा पूरा दे देगा तुम्हें, तुम्हें फिर किस चीज की परवाह। जैसे बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, दोनों किताबों में, कि एक शख्स ने इरादा किया कि आज रात मैं सदका दूंगा, वो लेके निकला चुपके से, यानी उसने खुफिया सदका करना चाहा, चुपके से एक औरत को दे आया। सुबह लोगों में बातें होने लगी, आज रात कोई शख्स एक बदकार औरत को कोई खैरात दिया है, उसने भी सुन लिया, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर अपने जी में कहा आज रात मैं एक और सदका करूंगा, लेके चला, एक शख्स की मुट्ठी में रख के चला आया, उसको थोड़ी बेचारे को पता कि कौन है, बस उसने अल्लाह की खातिर देना तो उसने दे दिया। सुबह लोगों में चर्चा हो रहा था, आज रात एक मालदार को कोई सदका दे गया, उसने फिर अल्लाह की तारीफ बयान की, उसने फिर इरादा किया आज रात मैं फिर सदका करूंगा। तो फिर उसने रात को सदका किया, दिन को फिर लोगों में ये बात हो रही थी कि आज रात किसी ने एक चोर को सदका दे दिया, वो कहने लगा अल्लाह तेरी तारीफ है, जानिया औरत के दिए जाने पर भी, मालदार शख्स को दिए जाने पर भी, और चोर के दिए जाने पर भी, चोर को दिए जाने पर भी अल्लाह तेरी तारीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा तो ख्वाब में उसने क्या देखा, एक फरिश्ता आया और कह रहा है तेरा तेरे तीनों सदके कबूल हो गए, शायद बदकार औरत माल पाके बदकारी से बाज आ जाए, शायद मालदार को इबरत हासिल हो और वो भी सदके की आदत डाले, वो उसको भी ख्याल आ जाए मैं भी किसी को दूं, शायद चोर माल पाके चोरी से बाज आ जाए, बाज दफा चोर चोरी इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारे अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे, या हमारे घर में कोई जरूरत है, हो सकता है वो उसको सदका मिल जाए, वो चोरी से बाज आ जाए। सुभान अल्लाह, हमें कितनी प्यारी बात सिखाई गई। ये भी नहीं कि आप फेंकते फिरें जैसे पहले बात हुई थी, मुस्तहिकीन को ढूंढें, अपने तौर पे कोशिश करें, लेकिन बाज दफा अगर आपके जैसे बस में नहीं है, अब आगे जाके कोई किस तरह से निकल आता है, अब जैसे इसको पता ही नहीं चला ना, तो फिर अब ऐसे वक्त के अंदर आपकी तरफ से सदका कबूल हो गया। ठीक है, और जो दूसरी आयत है, ये जो हमने पढ़ी आयत नंबर 273, ये आयत खास तौर पे उस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ना असहाबे सुफा थे, सुफा वाले जो अपने घरों को छोड़ के दीन का इल्म लेने के लिए घरों से निकले हुए थे। अब वो कहाँ, देखिए यहाँ पे आके वो रहते थे, इतनी उनकी यानी हालत खराब होती थी ना, पहनने को कपड़ा होता था, एक ही चादर होती थी जो सारे जिस्म पे लपेट लेते थे ना, खाने को कुछ होता था, क्योंकि जाहिर है अगर वो कमाने के लिए निकल जाता तो फिर सीखते कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उनमें एक हजरत अबू हुरैरा भी हैं, पता है आपको, हालांकि वो बहुत बाद में मुसलमान हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा अहादीस उन्होंने नरेट की हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो लोगों ने पूछा कि आप तो इतने बाद में मुसलमान हुए, आपने इतनी अहादीस रिवायत की हैं हजारों की तादाद में। तो फरमाया जब लोग जो है ना अपने कमाने और उसके अंदर लगे होते थे तो मैं बैठ के इल्म ले रहा होता, और उनकी भूख के वाकयात का भी आपको पता है कि कितनी भूख का आलम हो जाता था उनके ऊपर, बेहोश हो जाते थे गिर के भूख की वजह से। तो ऐसे लोगों पे खर्च करें, वो किसी से मांगते नहीं है, पता चल जाएगा उनके हालात से। वो बाज दफा किसी सहाबी से किसी आयत का, किसी बात का, कोई मसला ऐसा पूछ रहे थे, जो फरमाते थे मुझे पता होता था उस चीज का, लेकिन मैं इसलिए पूछता था कि शायद हो सकता है कि ये मुझे कुछ कुछ खाने पीने को ऑफर कर दे, कुछ दे दे, तो मसला जवाब दे के चले जाते थे। तो तारिफुहुम बिसीमाहुम, तुम उनकी अलामतों से उनको पहचान जाओगे कि इनकी हालत क्या है। तो जैसे ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को दीन के लिए वक्फ किया है, अब मर्द हजरात को घर का भी तो चलाना होता है खर्चा, तो अब वो कैसे खर्च करते होंगे, इन्होंने तो दीन के लिए खुद को वक्फ किया है, तो फिर उन पे खर्च करें, और दिन रात खर्च करें, खर्च करने की, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की आदत डालें। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह जो कुछ अल्लाह की खुशी के लिए को तुम खर्च करोगे, अल्लाह ताला उसके बदले तुम्हारे दर्जात बढ़ाएगा, यहां तक कि जो तुम अपनी बीवी को खिलाओ पिलाओगे उसके बदले में भी। अगर इंसान ये सोच के अपनी बीवी को भी खिलाता है तो उसके ऊपर भी वो सवाब पाता है, इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला के रास्ते में इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं।